ओम शांति। जो श्रृंखला चल रही है किचन मैनर्स, टेबल मैनर्स, शिष्टाचार कैसे हो भोजनालय में, तो उसके ऊपर आज है भोजन बनाने वालों की जिम्मेवारी है, तो उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। वैसे ब्राह्मण जो भी भोजन बनाते हैं वो तो ब्रह्मा भोजन बन ही जाता है, फिर भी कुछ कुछ धारणाएं क्या होनी चाहिए उस पर विस्तार से करेंगे। तो भोजन की महिमा तो हमने सभी ने सुनी है कि देवताएं भी तरसते थे ब्रह्मा भोजन के लिए, तो इसका वर्णन जो संदेशिया सुनाती है सूक्ष्मवतन में, जो देखते दृश्य, तो योगी हम सभी योगी हैं, ब्राह्मण हैं, तो किचन में हमारा किचन कैसा होना चाहिए और उसमें जो यूज करते सामग्री वो भी कैसी रखनी चाहिए, व्यवस्थित रहनी चाहिए, और बनाने वाला जो है वो भी कितना धारणायुक्त होना चाहिए। तो सबसे पहली पॉइंट यही आती है कि सफाई किचन में, किचन माना पहले एक पॉइंट आती है सफाई की। सफाई माना जैसे भोजन बनाया तो उसके पश्चात साफ सफाई करके रखना, और भोजन बनाने के पहले भी साफ सफाई करना, तो इससे एकदम स्वच्छता का गुण तो आ ही जाता है, लेकिन उसमें विचारों की उत्पत्ति होती है कि अच्छे संकल्प रहते हैं, पॉजिटिव शुद्ध संकल्प। तो सफाई भी एक दो प्रकार की होती है, एक स्थूल है एक मानसिक है। स्थूल में तो, और एक तीसरी भी आ जाएंगी शारीरिक, माना पर्सनल खुद की। तो स्थूल सफाई में तो झाड़ू पोछा लगाते ही और चूल्हे की सफाई जो भी करते हैं। फिर शारीरिक सफाई अगर देखें तो जो भोजन बनाने वाला है उसके लिए कहते हैं कि नेल एकदम कटे हुए हो, साफ हो, हाथ साफ हो, पैर भी साफ हो, वो पैर में सूज वगैरह हो, और सर पर कैप जरूर हो किचन में, क्योंकि कहा गया कि बाल गिरते हैं उसके कारण ये रखा जाता है। तो ऐसे कुछ मैनर्स होते हैं सफाई की, और एप्रन पहनना होता है, हाँ बाल भी कम होने चाहिए किचन भाइयों के लिए तो एप्रन भी पहना हुआ हो, या खास ड्रेस होता है किचन का वो भी पहन सकते हैं। तो ये शारीरिक सफाई में आता है। हाँ, हाथ में हैंड ग्लोव्स हो, अगर उस हर प्रकार की मतलब सेवा को देखते हुए, तो ये शारीरिक सफाई हुई। फिर स्थूल सफाई में तो जैसे देखा हमने कि चूल्हे की सफाई करना है, या फर्श की सफाई करना है, या बर्तनों की सफाई करना है, तो इसमें भी हम बांट सकते हैं कि जैसे रोज सफाई करते हैं बर्तनों की और फर्श की, उसके बाद हफ्ते में एक बार जो सफाई कर सकते हैं, कौन सी, जैसे अलमारी की सफाई है, डब्बे जो रखे होते हैं मसालों के उनकी सफाई, फिर एक महीनेवारी सफाई का चार्ट रख सकते हैं, जैसे फ्रिज की सफाई कुछ ऐसी चीजें है कि जो, हाँ कुछ रिपेयरिंग का भी रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे हम, हाँ तो इस, हाँ ये भी सफाई, हाँ ये सफाई में आ जाएगा अनाज, भोजन बनाने से पूर्व अनाज की सफाई, सब्जियों की सफाई, और काटने जो काटते हैं जो औजार होते हैं चाकू वगैरह उनकी भी सफाई, सब्जी उस जो बनाएगा उसको काटने वाले उनमें, तो ये होगी स्थूल सफाई। फिर होती है मानसिक सफाई, मन की सफाई। जो भोजन बनाने वाला हो तो मेन यही देखा जाता है कि मन की सफाई, जैसे योग करते, योग कराने वाला होता है, संधि पर बैठते हैं तो उसको ऐसे न चाहते हुए भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलता और निगेटिव भी नहीं चला सकता, क्योंकि उसको या ध्यान है कि सब मुझे देख रहे हैं, मैं विश्व की सेवा पर बैठा हुआ हूँ। उसी प्रकार किचन वालों के लिए भी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं ये बाकी सेवा में तो चल जाता है लेकिन किचन की सेवा है ये ब्राह्मणों के खास डायरेक्ट अन्न के द्वारा सेवा होती है, तो जो भी वो संकल्प करते वो भोजन में प्रभाव डाल सकता है। तो इसके लिए किचन वालों के लिए और ऊपर खास जिम्मेवारी होती है कि वो भोजन योग युक्त बनाए, बाबा की याद में बनाए। बाबा ने इसके ऊपर बहुत बोला हुआ है कि याद में भोजन बनाना है तो वो असर करता है। तो सबसे पहले तो इसमें शुद्ध संकल्प हो, भोजन जो बनाने वाला हो तो शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प में भी कि यह जो भोजन बनाया जा रहा है यह यज्ञ पिता के द्वारा रचा हुआ यज्ञ है, उन यज्ञ की जो ब्राह्मण आत्माएं उनके लिए बना रहे हैं या जो भी आत्माएं उनके लिए यह भोजन बना रहे हैं, तो ये ऐसी शुद्ध वाइब्रेशन उसमें डालना है। तो सब तो वो वाइब्रेशन का कमाल होता है कि वो भोजन पर उसका असर होता है और यह ब्रह्मा भोजन हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ने बनाया हुआ है, ब्रह्मा बाप के जो आचरण पर चलने वाले हैं, ब्रह्मा बाप की श्रीमत पर चलते हैं, तो ये ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन में पहले तो यही जो शुद्ध संकल्प करना है, फिर कुछ अगर हमारे अंदर निगेटिव आ जाता है या व्यर्थ संकल्प आ जाता है, इसमें हम इस स्थिति में अगर भोजन बनाते हैं तो वो भोजन फिर फलदायक नहीं रहता है। वो एक तो बनाने वाले को भी माना स्थिति को डाउन करता है और जो खाने वाले होते हैं उनकी भी स्थिति डाउन हो जाती है। तो ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए, शुद्ध संकल्प होना चाहिए। फिर दूसरा आता है कि कोई जो बुरी भावना न हो किसी के प्रति जैसे हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका असर भी भोजन पर पड़ जाता है। फिर जैसे कोई जो बाहर की ख्यालात है, जैसे कोई समाचार हमने सुना या देखा तो उसका वो प्रभाव, वो भोजन करते समय वो अगर चिंतन चलता है तो वो भी भोजन में असर डाल सकता है। फिर कोई षड्यंत्र या जैसे षड्यंत्र तो नहीं कहेंगे, कुछ किसी के गिराने की भावना ऐसी हो जाती है किसी की कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके प्रति, तो वो संकल्प चलते हैं उस समय अगर भोजन बनाते हैं तो फिर उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। तो ऐसे और सबसे पहले ये धारणा तो ब्राह्मणों की है ब्रह्मचर्य, क्योंकि मन में एकदम शुद्ध संकल्प ही चाहिए और धारणा एकदम पवित्रता की होनी ही चाहिए, तभी वो ब्रह्मा भोजन कहलाता है। तो ये धारणा बहुत जरूरी होती है ब्राह्मणों के लिए। और तो ये हो गया मानसिक स्वच्छता में आ जाता है कि मना योगयुक्त बनाए भोजन। फिर भोजन जो भी हम बना रहे हैं एक प्रसाद के रूप में बना रहे हैं, यज्ञ प्रसाद है, यज्ञ वत्सों के लिए बना रहे हैं, ये तो ये स्मृति में रहना ही चाहिए। और साथ साथ ये जो ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा भोजन अगर हम योगयुक्त बनाते हैं तो यह दूसरे के लिए क्या करता है, एक दवाई का काम करता है। ब्रह्मा भोजन दवाई बन जाती है, क्योंकि ये कोई समझो कोई व्याधि है और व्याधि में अगर उसको अचानक कोई अच्छा सुविचार वाला भोजन मिल गया और जो योगी ने जो भोजन बनाया उन्होंने अच्छे संकल्प डाला कि ये जो भी भोजन खाएगा उसका जो भी आदि व्याधि है सब नष्ट हो जाएंगी, निरोगी हो जाएगा। अगर ये भोजन संकल्प में भोजन में डाल दिया ये संकल्प, तो वो जो व्याधि वाला व्यक्ति उसका जो कल्याण हो जाता है, उसका जो व्याधि खत्म हो जाती है, माना ये दवाई का काम करता है ब्रह्मा भोजन। तो इस फिर दूसरा किसी किसी के लिए वरदान बन जाता है ब्रह्मा भोजन, अगर ये योग युक्त तो अगर बनाया हुआ तो किसी के लिए ये ब्रह्मा भोजन खाने से ही उसकी दृष्टि वृत्ति सब चेंज हो जाती है और वो अपने शुद्ध विचारों में आ जाता है। किसी के भी जो विघ्न में चलता है उसके विघ्न दूर हो सकते हैं। किसी की जो अवस्था है, कोई कोई साधारण अवस्था में चलते हैं फिर उनकी अवस्था भी ऊंची हो जाती है। तो ये ब्रह्मा भोजन मतलब खाने से ही अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो फिर दिल से क्या निकलती है, दुआएं निकालती है, तो ये दुआ बहुत काम करती है। भोजन तो एक खाने वालों को भी दुआएं मिलती है और खिलाने वालों को भी, तो एक दूसरे को ये दुआएं प्राप्त होते रहती है। हाँ, दुख भंजन हो जाता है, भोजन ही दुख भंजन हो जाता है। तो भोजन जितना हम निस्वार्थ भाव से बनाते हैं उतना ही ये असरदारक माना असरकारक होता है और दूसरों को कल्याण के लिए निमित्त बन जाता है। भोजन मेन भोजन जो बनाते वो अवस्था के ऊपर ही पूरा निर्भर रहता है। जैसे एक कहानी थी कि कोई राहगीर राह चलते चलते, ये भोजन के ऊपर नहीं है लेकिन इससे मिलती जुलती कहानी है कि राहगीर को राह चलते प्यास लगी तो उसको कुआं दिखता है तो कुआं के पास जाता है, तो कुआं पानी तो पी लेता है, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जाते जाते वो बकेट भी ले जाता है साथ में। बाद में वो खुद ही सोच करता है कि ये मैंने क्या किया, मैं ये बकेट क्यों लेके जा रहा हूं, हाँ आगे के लिए क्यों लेके जा रहा हूं, ऐसे सोच चला। दो प्रकार की कहानी है, तो वो खुद ही करता है, तो बाद में वो विश्लेषण करता है कि ये क्या हुआ, तो बाद में विश्लेषण करने के बाद पता चल जाएगी जो कुआं जो खोदा था ये कोई चोर ने वो कुआं खुदवाया था, तो वो पानी पीने से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा तो उसका संकल्प चेंज हो जाता है। तो ये तो उसी प्रकार अगर भोजन भी हम उस स्थिति में बनाते हैं तो वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार भोजन की महत्ता है। और भोजन जो बनाने वाला है उसकी जो मतलब जो मेनू बनाते हैं ना कि आज क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, लेकिन वो ये देखना चाहिए कि शारीरिक है या नहीं, माना शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है क्या नहीं, नहीं तो फिर विरुद्ध आहार हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि दही वड़ा अगर बनाते हैं तो उसमें उड़द की दाल नहीं होनी चाहिए, उड़द की दाल है और दही है तो ये विरुद्ध आहार माना जाता है, लेकिन अगर बनता है तो फिर शरीर पर प्रभाव डालता है। हाँ, खीर भी नहीं। तो ये मेनू का थोड़ा मतलब ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और कहा जाता है कि दूध दूध के साथ खट्टे चीज नहीं खानी चाहिए, वो तो अपने ऊपर है जो हरेक के, लेकिन जो किचन वाले के ऊपर है कि वो ध्यान दे कि दूसरों का भी ये विरुद्ध आहार न हो। जैसे कटहल की सब्जी बनती है तो उसमें कहा जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए या खीर नहीं चाहिए, दूध की जो भी चीजें ये विरुद्ध आहार माना जाता है, तो ये मीनू का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार किचन में तो बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो जो बनाने वाला है उसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी रहती है कि ये भोजन बनाने से माना मेरे पुण्य कर्म होने चाहिए, माना घाटा नहीं होना चाहिए, तो ये जिम्मेवारी होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि किचन में जैसे साफ सफाई तो रखा जो पॉइंट होगी, फिर भी जैसे मन की सफाई में आता है कि परचिंतन नहीं होना चाहिए। मेन ये है कि जो चिंतन एकदम बहुत सही होना चाहिए, हाँ चिंतन एकदम श्रेष्ठ होना चाहिए, माना दूसरे का नहीं होना चाहिए पर स्वचिंतन ही होना चाहिए, शुभ चिंतन होना चाहिए। और क्या अच्छा जी, हाँ ये भी एक युक्ति है जैसे सूरज भाई जी बताते हैं कि हर दृष्टि देना है पहले, कोई भी नहीं सबसे पहले तो उसका किचन में आने के पहले ही योगी के लिए स्वच्छता में वो आता है कि स्नान करके ही किचन में प्रवेश करें और प्रवेश करते समय संकल्प करें कि ये शिव भोलेनाथ का भंडारा है और ये भंडारा सबको ब्रह्मा भोजन खिलाने वाला है। तो इस प्रकार वो शुभ संकल्प करें और आते ही फिर दृष्टि का जो महत्व है वो हर जो सामग्री है उस पर दृष्टि दे सकता है। जैसे हाँ हाँ जैसे अभी अभी बाबा ने कहा ड्रिल में कि आपकी दृष्टि पिचकारी है, तो ये सभी वस्तुओं पर शक्तिशाली पिचकारी देनी है। मसाला जो भी मसाला बनता है या जो भी सब्जियां हैं उन पर ऐसी दृष्टि दे सकते हैं, तो भी उसमें शुभ भावना हो कि ये भोजन सभी ब्राह्मणों के लिए बन रहा है, तो ये अच्छा कार्य कर सकता है। इस प्रकार और क्या कर सकते हैं भोजन में, हाँ बनाने वाले की धारणा है कि कुछ भी भोजन करते समय खाना नहीं है, हाँ बनाते समय हाँ जैसे पकोड़े तल रहे हैं तो तलते हुए एक खाते हुए नहीं बनाना, तो नमक वो चखना थोड़ा अलग बात है, दूसरों को दे सकते हाँ दूसरे हाँ मशरूम मशरूम तामसिक में तो नहीं आता है, लेकिन जो उसकी तासीर गरम गरम की उसको यूरिक एसिड बढ़ता है बोलते उसके, मतलब गरम में आता है। अभी तामसिक है ये मेरे को भी पता नहीं है मूली तो वैसे तामसिक में माना जाता है गरम होता है, हाँ लेकिन ब्राह्मणों के लिए वैसे मना है, लेकिन कुछ दवाई के रूप में यूज कर सकते हैं। हाँ कोई कोई हाँ हाँ उसमें बाबा ने बताया हुआ ना कि कोई अगर एक व्यक्ति भी ज्ञान में है और उस घर में मीट बन जाता है, तो जो एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी होती है कि वो भोजन अगर बनाता है या कोई भी वस्तु जो मीट खाने वाले पानी पिलाना है या उसको चार्ज करके कि वो खिलाना है, भले उनकी जिम्मेवारी वो तो अपनी इच्छा से बनाते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इनकी जो ये नहीं होनी चाहिए, हम सोचते कि इनको नहीं होनी चाहिए, हम सोचते कि मतलब उनका कल्याण हो जाए या छूट जाए, तो उसके लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको छुड़ाने के लिए बाबा की मदद लें। तो बाबा की मदद कैसे लें, तो जो भी हम उनको खिलाएंगे अपनी तरफ से तो उसमें वो चार्ज करनी है, उसमें इतनी शक्ति मना प्रभाव डालना है कि वो उनके विचार बदल जाए, धीरे धीरे वो बदल जाते हैं, लेकिन एक बार में ही नहीं होता, उसको अपनी हिम्मत नहीं हारनी होती है, उसमें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होता है। तो उनके या फिर अमृतवेला उनको टचिंग करानी होती है कि ये जो आहार है, जो तामसिक है या मांसाहारी है, जो भी है वो नहीं होना चाहिए, उसमें संकल्प टच होना चाहिए, तो ऐसी हमारी भी स्थिति उसमें होनी चाहिए। हाँ बाबा को ऑफर तो करना ही है ना, जो ज्ञान में है वो तो ब्रह्मा भोजन ही बनाएगा ना, क्योंकि उसके हाथ का जो बना हुआ ब्रह्मा भोजन है, अगर वो खाएगा तो वो शुद्ध हो ही जाएगा। या फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम कर सकते, कभी ब्राह्मणों को बुला के ये सामूहिक भोजन करा सकते, नहीं आ सकते ना अगर हाँ ब्रह्मा भोजन ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ, तो ब्राह्मण माना ब्रह्मा के आचरण पर। हाँ तो शिव बाबा क्या है, निराकारी है, और ब्राह्मण है तो शरीरधारी है, तो निराकारी तो बना ही नहीं सकता, बोले नाम हम लगा देते क्योंकि वो सभी का पालनहारी है, मेन वही सृष्टि का या ब्राह्मण का पूरे ब्रह्मांड का मालिक तो शिव बाबा ही है, उसको ही मानेंगे ना, ब्रह्मा बाबा को नहीं मानेंगे। हाँ लगा नहीं है, वो तो बाबा ने कहा हुआ है, बाबा के लिए अलग से जैसे नहीं नहीं वो छोटे छोटे बर्तन खास भोग लगाने के लिए। हाँ तो वो उसमें भोजन अच्छा नहीं लगा सकते, किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ नहीं। हाँ 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 इसमें तो कोई राय ही नहीं ये तो बना ही सकते। हाँ तो ब्रह्म तो उसमें शिव माना पूरे ब्रह्मांड, शिव बाबा माना ब्रह्मांड का मालिक, भगवान कहा गया, और ब्रह्मा माना साकारी सृष्टि का रचयिता, तो इसके द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, और ब्राह्मण जो भोजन बनाते हैं, तो ब्राह्मण माना जो ब्रह्मा के मत पर चलने वाले, उनका ज्ञान योग धारणा सेवा जो भी है श्रीमत उस पर चलने वाले ब्राह्मण, उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन। फिर किचन में जैसे अनेक सुविधा होती है, उस प्रकार कुछ कभी आग लग जाती है, हाँ फायर एक्सटिंग्विशर वहां जरूरी होते हैं, तो उसमें भी तेल को आग लगने के लिए विशेष प्रकार के वो बनाए जाते हैं, तेल को आग लग गई तो बुझाने के लिए हाँ, तो वो भी वहां टंगे हुए होते हैं मना हर जगह नहीं होती, यहाँ पांडवों के किचन में तो ठगी हुई है। घर में पानी से तेल का है तो पानी से नहीं बुझाना है। हाँ, गीला कपड़ा डाल सकते हैं। नहीं, वो गैस सिलेंडर को आग लगी तो गीला कपड़ा डाल। हाँ, अगर जहाँ सुविधा नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी जो हाँ भोजन अगर बन गया तो फिर सभी जो चूल्हे की स्विच ऑफ करना ना भूले, ये डायरेक्शन रहता है, और गैस का भी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। उसी किचन में लगा सकते बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे बाबा के लिए तो अलग बनाना ही है, लेकिन उनके लिए अगर बनाना है तो ये तो घर परिवार को चलाना है ना आगे हमको, तो उनके ध्यान में रखते हुए वो कराना है। लेकिन धीरे धीरे कभी कभी मिस कर देना है प्याज, तो वो उनको फिर पता नहीं चल पाएगा। हाँ, अगर फिर क्या करें, प्याज की जो आदत उनके छूट जाती है, लेकिन वो अपने ऊपर है, गृहिणी के ऊपर होता है कि धीरे धीरे कम करते जाना है। और फिर जो मैं कई सुना था, एक ब्राह्मण परिवार ने, उन्होंने गोभी होती ना फूल गोभी, उसको ही छोक लगा के फिर प्याज के रूप में कन्वर्ट कर दिए थे, तो उनको पता नहीं चला कि प्याज नहीं डल रहा है, अभी प्याज छुड़ा दिए थे, तो धीरे धीरे ऐसे उनकी पूरी आदत छुड़ा दी, फिर प्याज नहीं डालते थे, उनको पता भी चल गया कि ये प्याज नहीं डाल रहे, तो वो मान गए कि नहीं ये कोई बात नहीं, नहीं भी डालेंगे तो हम प्याज के बिना रह सकते हैं। तो ये एक युक्ति होती है कि प्याज कैसे छुड़ाने की। हाँ, वो बनाने के वो शुद्ध वाइब्रेशन डाल दिए ना हम, तो वो मना जो चाहत होती है कि प्याज ही चाहिए, वो मिट जाती है। हाँ, कुछ ऐसे अभी मार्केट में आ रहे हैं कि जैसे लहसुन और प्याज पैकिंग होता है, लेकिन हम पहचान नहीं कर पाते, तो इसलिए हम खुद का अगर बना सकते हैं घर में ही खरीद के मसाला, तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसे हमने एक मैगी देखी, कौन सी, रामदेव बाबा वाली, तो वो तो हम करते शुद्ध ही करके बना लेते हैं, लेकिन वो जो मसाला भी देता है एक पैकेट में, उसमें लहसुन होती है बोलते हैं, अभी हमने तो यूज नहीं किया लेकिन हाँ, तो वो लहसुन होती है, तो टेस्ट लहसुन का ही होता है ज्यादा करके, टेस्ट देती है, लेकिन हम ब्राह्मणों को पता नहीं चलता, तो फिर वो गलत हो जाता है। हाँ, तो मैगी नहीं खानी चाहिए, बराबर है, या घर अगर आप बना सकते हैं खुद तो बना के खा सकते हैं। हाँ, भोजन बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि कुछ गहने नहीं हो। हाँ, कैसे अंगूठी, हाथ की अंगूठी ना हो, और कड़ा भी पहनते कोई बड़ा, वो भी नहीं हो। हाँ, और कुछ हाँ, भोजन में ये भी मैनर्स है कि भोजन का मैनर से ही है कि एक बार क्या हुआ, एक कहानी है इसमें कि एक भोजन बना रहे थे कृष्ण के लिए भोग, तो भोजन बोलते हुए बना रहे थे, तो बोलने से वो बोलने के वो कण गिर जाते, थूक के कण। तो वो एक दिन जो एक गृहिणी थी माना भक्तन भक्ति, तो वो उसके कारण वो बन जाता है, तो झूठा कहा जाता है भोजन, माना झूठा हो गया। तो कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था एक दिन। फिर वो क्यों स्वीकार नहीं किया, तो उसने बताया कि वो अपने ही स्वचिंतन किया कि मेरी इससे गलती क्या हुई, आज भगवान ने ये श्री कृष्ण के लिए कहा गया था कि भगवान ने ये स्वीकार क्यों नहीं किया, आज तो भगवान भूखे रह गए। तो फिर वो क्योंकि पास में कुछ कोई रहे होंगे तो बोलते बोलते बना दिया था, तो बाद में पता चला कि मैं बोलते बोलते भोजन बनाया इसलिए भगवान ने स्वीकार नहीं किए। तो फिर वो सचेतन करती है, फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं मुझे बोलते हुए भोजन नहीं बनाना है, नहीं तो हमारे ठाकुर जी भोजन नहीं करते। तो उस फिर वो उसके बाद मौन रह के भोजन बनाने लगी और वो फिर से भोजन स्वीकार करने लगे। तो इसलिए कहा गया कि भोजन मौन में रहकर ही बनाना चाहिए, तो ये भी एक धारणा है। हाँ, अगर कोई भी भोजन बनाने वाला है उसमें कोई कुछ सर्दी है या खांसी है तो भोजन बनाने में उस दिन मना कर देना चाहिए कि आज मेरी तबीयत बराबर नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार कोई भी बीमारी अगर है शरीर में तो भी नहीं होनी चाहिए, और योगियों के लिए भी मेडिकल चेकअप भी करते रहना चाहिए कि मेरे में कोई कुछ बीमारियां तो नहीं है, उसका उसके कारण दूसरों के ऊपर भी प्रभाव न पड़े, इसलिए चेकअप भी बीच बीच में करते रहना चाहिए। हाँ, भोजन का जो मेनू बनाते हैं तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक करना माना मोर के समान है, और बाबा ने इसमें बोला हुआ है कि एक एक कना ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है तो बहुत अमूल्य हो जाता है। तो भोजन भी उतना बनाना चाहिए जितना मतलब ये जरूरत हो, वेस्ट न हो बनाते समय। तो ये जो रोज बनाते हैं उनको पता चल जाता है कि कितना बनाना चाहिए कितना नहीं बनाना चाहिए। हाँ, तो हाँ, हर चीज का ध्यान बहुत जरूरी होता है, उपयोगिता। तो इसमें एक कहानी है महाभारत में आती है, भोजन जो कितना बनाना चाहिए। तो महाभारत में कौरव पांडव का जो युद्ध हो रहा था, तो सभी राजा तो भाग ले लिए थे भारतवर्ष के, लेकिन दो या तीन राजाओं ने भाग नहीं लिया था, एक तो बलराम और दूसरा एक विराट, शायद विराट ने लिया था, हाँ विदुर, और एक तीसरा था उड़पी के राजा साउथ इंडिया के, तो उन्होंने भाग नहीं लिया था। वो आए थे सेना लेके दोनों किसी को भी मदद करने, तो पांडव बोल रहे थे हमारे पास आओ, कौरव बोलते थे हमारे पास आओ। तो वो सोच में पड़ गया कि इधर जाओ, तो उसने निर्णय किया कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं दोनों सेना के लिए भोजन बनाऊंगा। तो वो राजा ने सोचा किचन की सेवा ले लिया था। तो ये पूरा इशारा श्री कृष्ण का ही था कि उन्होंने सोचा कि अक्षौणी सेवना है, इसके लिए भोजन कौन बनाएगा। तो ये श्री कृष्ण का ही प्लान था उस समय कि ये भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो रोज भोजन बनाता है इतने हजार लोगों का, लाख, हाँ नहीं करोड़ों, नहीं लाख, लाख अक्षौणी माना लाखों में ही आते,
हाँ लाख तो उसमें दिखाया गया है कि वो रोजन भोजन बनाते थे, लेकिन फिर हर दिन सैनिक मारे जाते थे, तो उतना कम बनाना पड़ता था, लेकिन जो भी भोजन बनाता उतना ही बनता था, माना ज्यादा नहीं बनता था, हर दिन संख्या घटती जाती है। हाँ, मतलब एक्यूरेट बनाता था वो, जो उनके ऊपर जो जिम्मेवारी थी दक्षिण के राजा, तो वो एक तो भोजन लास्ट समय तक उन्होंने पूरा वेस्ट नहीं किया, माना जितना भोजन चाहिए उतना ही बनता था। तो जब समाप्त हो गया युद्ध, उसके बाद युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि आपने ये कैसे किया, तो उसने रहस्य बताया, ये तो श्री कृष्ण भगवान की कमाल है। तो वो बताया उन्होंने राज कि जब श्री कृष्ण आते थे रोज रात में किचन में किचन में आते थे, तो वो उनको मैं फली सेंगदाना देता था। नहीं नहीं सेंगदाना देता था, और जितना जो वो गिन के रखते थे, तो राजा है वो गिन, जैसे रोज की 50 है या 60 है, ऐसे मूंगफली गिन के देते थे, और वो गिन के ही जितना श्री कृष्ण आते थे जितना खाते थे बाकी छोड़ देते थे। तो वो जितना जो खाते थे उतनी सेना वो मरती थी, माना हाँ उतनी तो वो गिनते थे कि हाँ आज इतने, तो वो उसे अंदाजा लगाते थे। तो रोज का यही था कि रोज की मूंगफली जितनी खाएंगे उतनी सेना मारी जाएगी। वो याद नहीं है वो तो, हाँ उड़पी तू याद नहीं है नाम, लेकिन एक जगह पढ़ा था मैंने कि ये भोजन का संतुलन कैसे बनाए रखते थे, तो ये इसमें वेस्ट नहीं करते थे, तो ये सेंगदाना खाने के ऊपर ही वो उसकी समझ जाते थे कि आज भगवान ने इतना, तो वैसे नहीं, वैसे डबल गर्म करना मना है। हाँ भोजन, हाँ वो तो बनाते थे, लेकिन अभी जो वैसे ब्राह्मणों में तो सफल करना एक शब्द है, ब्राह्मणों के सफल करने का नियम है, वैसे सफल इसलिए करते कि बाबा की याद में बनाया हुआ है और बाबा की याद में उसको खाते हैं, तो कुछ प्रभाव नहीं करता, ब्रह्मा भोजन के नाम से जाने थे, लेकिन शरीर के हिसाब से थोड़ा फ्रेश होना जरूरी है, अगर हो सके तो, अगर दूसरों मतलब हम दूसरों को देने के नाम पर जानवरों को दे देते हैं ना, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि हम हमारे लिए फ्रेश नहीं है तो जानवरों के लिए भी फ्रेश नहीं है ना, तो इसलिए उसके लिए अपने आप को दंडित करना पड़ेगा उतना भोजन दूसरे दिन कम खाना है अच्छा अच्छा किचन में, किचन जैसे बर्तनों की आवाज, हाँ जैसे बर्तनों के ऊपर भी ये मैनर्स है कि हम योगी है तो बहुत शांति के साथ बर्तनों का यूज करें, और निकालते समय भी आवाज न हो,
वैसे बाबा ने मुरली में कहा था, एक मुरली में आपके बर्तन नहीं है ये तो घंटे बजते हैं, एक मुरली में कहा हुआ है लेकिन नहीं होना बहुत अच्छी बात है तो कहा गया कि रोटी गोल होना चाहिए, रोटी गोल बननी चाहिए, तो गोल बनने से ना पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेंगे, तो इसलिए हाँ किचन मैनर्स में, हाँ किचन मैनर्स में भी आ जाते हैं कि अपने जो चलन है एकदम स्लो मोशन में हो कि फरिश्ते की मोशन, हाँ एकदम फरिश्ता भी नहीं मतलब जल्दबाजी ना हो, क्योंकि कई को होता है कि अभी जितना जल्दी भोजन बन जाए फ्री हो जाऊंगा और फिर दूसरी सेवा या आराम मिलेगा या कोई दूसरी जगह जाना है तो जल्दी जल्दी बनाते, तो वो नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और शांति के साथ, हाँ कुछ चक्कू है सब्जी काटते हैं तो इधर उधर नहीं रखनी चाहिए, उसकी जगह एक फिक्स होनी चाहिए, और बच्चे जैसे होते हैं तो उनका हाथ नहीं लगना चाहिए चाकू, उसके लिए चक्कू कोई ऊपर ट्रे में रखे जा सकते हैं, और हर चीज किचन की व्यवस्थित होनी चाहिए, जो चीज जहां से लिया वहां रखी जानी चाहिए, क्योंकि दूसरी बार जब यूज करेंगे तो उसी समय माना हाँ ब्रह्मा भोजन बनाते समय माना बाहर टीवी तो बंद होना चाहिए, बाहर के गीत या कोई समाचार चल रहा है हाँ वो नहीं होना चाहिए बना, जैसे जैसे लौकिक घरों में देखा जाता है कि ये होता है कि टीवी देखते हुए भोजन बनाते, कोई सीरियल चल रही है तो वो सीरियल में अगर कोई हिंसा का सीन है तो जो सीन है उस सीन में अगर हम बनाते हैं तो फिर उसका प्रभाव भोजन पर पड़ जाता है, क्रिकेट बनाते समय खेलते समय क्रिकेट वही जो टीवी पर जो चल रहा है क्रिकेट देख रहे हैं तो उस समय भोजन नहीं बनाना चाहिए तो वही तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और भोजन पर जाता है। हाँ किचन में बाबा के सॉन्ग बजने चाहिए, और अगर बाबा की कुछ वानियां है तो लगा सकते हैं, अव्यक्त वानियां बहुत जरूरी है। हाँ भोजन गुस्से में नहीं बनाना, जैसे वो मानसिक सफाई में हमने देखा कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, और गुस्से का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ जाता है भोजन में। हाँ तो ये देखना चाहिए कि कोई अचानक मेहमान आ गया तो नींद
बहुत तेज ठंड पड़ रही है और लेट नाइट आ जाओ बेड छोड़।
हाँ तो
पहले बोले तो 10 लोग आने फिर आ रहे
हैं, आगे 50 लोग
आने बाद में 5 मिनट पहले बताया 50 लोग आ रहे हैं,
तो उस समय बड़ी दिल रखना पड़ेगा अपने आप कि टाइम नहीं है तो हाँ टाइम नहीं है तो जो पहले से बना हुआ है अपने पास जैसे ब्रेड है या पापड़ है तो फटाफट तल के दे देते तो ये सहयोग लेने की भावना बहुत अच्छी है, आप भी आए तो पहले एक जन जाके उनको सूचना दे दे कि ऐसे ऐसी स्थिति है आप थोड़ा मदद कीजिए, तो वो भी हाँ राजी हो जाते हैं और वो भी सहयोग दे देते हैं।
कभी कभी यहाँ जैसे सीजन में अभी पार्टी आ जाती है, हाँ, तो संख्या ज्यादा हो जाती है कभी, तो भोजन कम पड़ जाता है, तो तुरंत फिर डायरेक्शन दिया जाता है कि नहीं भोजन कम पड़ गया, तो फिर बनाया जाता है तुरंत गरम गरम भोजन बनाया जाता है। कभी कभी रोटी रात में खत्म हो जाती है तो फिर से माताओं को बुला लिया जाता है कि आ जाओ रोटी बना। वैसे यहाँ सभी सुविधा है लेकिन हर जगह ऐसी नहीं होती है। तो जैसे दादी अभी क्लास में बोलती थी ना, हाँ, कभी इधर बारिश पड़ रही है और दादी को ख्याल आ गया कि आज बारिश हो रही है तो हलवा बना दो, तो उसी समय मुरली के समय दादी डायरेक्शन दे देती थी, तो किचन वालों के तो फिर एकदम ये हो जाता, हाँ वो हाँ खुशी से बना देते कि दादी का ऑर्डर है तो बनाना ही होगा, तो इस प्रकार खुशी से। हाँ, भोजन बनाते समय धीमी आंच होना चाहिए, तो इसमें इसको विटामिन्स कम नष्ट होते हैं इसमें, अगर समय लगता तो ये भाप में पकाने की आ जाता, ये उबालने की इसमें आता है। इस भोजन में भी ये कुछ है, कुछ चीजें भोजन में बनाते समय कुछ चीजें है जैसे उबालने वाली चीजें, भुनने वाली चीजें, सेकने वाली चीजें, तो इसमें भी अपने जो विटामिन नष्ट हो न हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कम आंच पर अगर कोई आलू उबालते हैं तो उसकी विटामिन कम नष्ट होता है। हाँ, जो सब्जी होगा वो सब्जियां तो होती है आजकल, इस पर एक वर्णन है सब्जी क्योंकि वो जो ये क्या नाम इसका मुसल कैसे बने ना, मुसल का जो मिसाइल, हाँ कृष्ण वाला जो मुसल है, तो कृष्ण के पटपौत्र खेल रहे थे, खेलते खेलते आपस में लड़ने लगे, तो नहीं खेलते खेलते आपस में कुछ शरारत करने लगे, बहुत शरारती थे, तो एक को पेट में कुछ भर दिया ऐसा कपड़ा या कुछ ऐसी चीज, और उसको कुछ साड़ी जैसा पहना दिया, और साथ एक साधु जी थे वो भविष्य देखते थे, तो उनके पास शरारत के रूप में ये गए कि एक एक बच्चा है बच्ची ऐसे पता साधु के पास गए, तो साधु ने तो जान लिया कि ये शरारत कर रहे, तो उसको क्रोध आ गया, तो श्याप दे दिया कि तुम्हारे पेट से मुसल निकलेंगे, तो मुसल निकलेंगे और सचमुच वो हाँ यदुवंश का विनाश करेंगे, यादव पूरे नष्ट हो जाएंगे, तो ये श्याप दे दिया तो सही हो गया, उनके पेट से मुसल निकला, तो मुसल बच्चों ने तो निकाल दिया जो लगाया हुआ था कपड़ा, तो मुसल बन गया था, तो बाद में वो मुसल बच्चों ने उसको तोड़ दिया, और हाँ उस जो कुछ लोहे का कन था वो सब मतलब मुसल को तोड़ दिया, और जो मुसल का नोक होता है वो जो नोक जैसा होता है उसका उसको भी फेंक दिए, तो जो मुसल का जो कन थे मुसल उसके ऐसे फेंक दिए तो सब्जी उग गई, दो प्रकार है इसमें कुछ घास उगी, तो सब्जी होगी, तो सब्जी वो यदुवंश ने खाए तो वो यदुवंश का नाश हो गया। हाँ, और दूसरा वो नोक से तीर का बाण बनाया था वो श्री कृष्ण के अंगूर मिसाइल। लेकिन अभी का जो एक प्रसंग आया था कि जब एटम बॉम्ब्स जो बने थे हिरोशिमा नागासाकी पर दागे थे यूरोप में, तो उसके बाद में जो फैक्ट्रियां बनती थी यूरोप में, तो केमिकल जो होता था वेस्ट, उसका वेस्ट वो खेती में ऐसे फेंक देते थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सब्जियां उग रही है, बहुत मतलब उसको जान आ रही है, मतलब पहले जो सब्जियां उगती थी कम, लेकिन जो केमिकल से और तो उससे फिर वो खाद का निर्माण हुआ, यूरिया फास्फेट, वहां से ये केमिकल की जो खेती में यूज करने लगे, और वही जो केमिकल फास्फेट अभी पूरे विश्व में फैल गया वैज्ञानिकों ने जो बनाया, और अभी हम वही सब्जियां खा रहे हमारे पास आ गई तो ये जो गायन है मुसल का कि ये शास्त्रों में गया, कैसे गया, अभी के वर्तमान स्थिति को लागू होता है। अच्छा, ओम शांति।
सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, कृष्ण के संग सभी करेंगे राग। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे राग। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास, आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार, लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी।